गुरुवार 4 अगस्त दिन भर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन के बीच से ही वतन लौटे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। भारत पाकिस्तान का तनाव हावी रहा सम्मेलन पर।
सार्क एंटी टेररिज्म की जो बैठक होनी है अमंगस्ट वेरियस एंटी टेरर फोर्सेस ऑफ ईच कंट्री, उनकी बैठक 22-23 सितंबर को।
दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल को बताया दिल्ली में सबसे ऊपर। मुख्यमंत्री केजरीवाल के कई फैसलों को बताया गैर कानूनी।
दिल्ली के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दिल्ली के लोग एलजी साहब के पास जाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने विधायक और विधानसभा चुन रखे।
मुंबई गोवा राजमार्ग पर गिरे पुल के साथ बहे लोगों को ढूंढने का काम जारी। अब तक 9 शव मिले। होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान में हो रहे सार्क गृह मंत्रियों की बैठक से दिल्ली लौट आए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवादी को किसी भी हालत में शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गए भारतीय गृह मंत्री ने आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को बहुत कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों का समर्थन देना और उनका महिमा मंडन बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी गृहमंत्री की तरफ से दिए गए भोज में हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली में एक विशेष अदालत ने पीपली लाइव फिल्म के सह निर्देशक और इतिहासकार महमूद फारूकी को बलात्कार के मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज संजीव जैन ने महमूद फारूकी को धारा 376 के तहत दोषी पाया था, जिसमें उन्हें न्यूनतम 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। महमूद फारूकी को दिल्ली के सुखदेव विहार में उनके घर पर एक अमरीकी महिला से बलात्कार का दोषी पाया गया था। ये मामला पिछले साल का है। सीरिया में मानवीय सहायता के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र की टास्क फोर्स के प्रमुख जैन इंग्लैंड ने सीरिया में युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में 18 में से सिर्फ 4 जगहों पर ही मदद पहुंचाई जा सकी। इन इलाकों में रह रहे 12 लाख लोगों का करीब 40वां हिस्सा ही यहाँ पर रहता है। इंग्लैंड ने बीबीसी को ये बताया।
Every day people are dying in this war. If there hadn't been a concerted humanitarian
operation, हजारों लोग मर रहे हैं। अगर कई पक्षों ने मिलकर कोशिश न की होती, रूस और अमेरिका की सह अध्यक्षता में अधिकारियों ने प्रयास नहीं किए होते तो स्थिति और खराब हो सकती थी। शून्य से शुरू कर हम कुछ दूर तो पहुंचे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कुछ चिकित्सकों पर हमले भी देखें तो अपने समय में इतना भयंकर युद्ध मैंने कभी नहीं देखा। ये थे जैन इंग्लैंड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश की पुलिस ने ढाका की होली आर्टिसन बेकरी पर हमले के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें कई विदेशी लोग भी शामिल थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में ब्रितानी नागरिक हसनात करीब और कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र तहमीद खान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों हमले के वक्त कैफे के अंदर मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि इन दोनों से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत ली जाएगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो की तीसरी सभा दिन भर में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। खबरों की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान दौरे से गृहमंत्री राजनाथ सिंह के, जो आज पूरा करके वो वापस लौट आए हैं। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि वो बीच से ही वापस आ गए हैं। पाकिस्तान में राजनाथ सिंह के दौरे से जुड़ी कोई अच्छी खबर तो पहले भी नहीं आ रही थी। पहले चरमपंथी गुटों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए, फिर सुरक्षा का मसला रहा, उसके बाद नवाज शरीफ ने कश्मीर का राग छेड़ा और आज ये खबर आई कि राजनाथ सिंह ने सम्मेलन में चरमपंथ के मुद्दे पर कुछ बातें कहीं। हमारे सहयोगी सलमान रावी राजनाथ सिंह के इस दौरे पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन उनसे बात करने के पहले आइए जान लेते हैं कि पाकिस्तान में आज क्या कुछ हुआ। ये सवाल मैंने पूछा हमारी सहयोगी इरम अब्बासी से।
जी, आज बेसिकली जो इंडियन होम मिनिस्टर या सात ममालिक में जो शामिल इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस थी, और उस कॉन्फ्रेंस में जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने भी खिताब किया, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, चौधरी निसार अली खान, उन्होंने भी खिताब किया। और मैं जो हमें फुटेज नहीं मिली जिसमें इंडियन होम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी खिताब आया, तो उसमें अगर हम पाकिस्तान के मौके की बात करें तो पाकिस्तान ने यही मौके अपनाया है कि अपने जो कौमी एजेंडाज हैं उससे बालातर हो के जो है सात ममालिक के इश्तराक के लिए हमें काम करना होगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो दहाइयों, इतने पुराने दहाइयों के हमारे स्टैंड्स हैं जो कि रिजिड स्टैंड्स हैं, हमें उससे भी हटना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम मिलकर काम कर सकें और तरक्की के लिए काम कर सके आवाम की, इन आठ मुल्कों की जो कि सराक में शामिल है। लेकिन जो एक अजीब बात है वो ये है कि दोनों ममालिक ने, पाकिस्तान और इंडिया ने, कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही ये तय कर लिया था कि दोनों बात नहीं करेंगे, बाहमी बातचीत नहीं होगी। और इस कॉन्फ्रेंस में यही हुआ कि दोनों ममालिक ने, पाकिस्तान और इंडिया ने, जो कि साउथ एशिया की बड़ी एटमी ताकतें हैं, उन दोनों ने जो है इस मौके से फायदा उठाने की बजाय बातचीत ना करने का फैसला किया। और आपको पता है जैसे कि एक जॉइंट प्रेसर जो यूजली इस तरह की कॉन्फ्रेंस के बाद आता है, उससे पहले ही इंडियन होम मिनिस्टर जो है वो भारत चले गए।
ये थी हमारी उर्दू सेवा की सहयोगी इरम अब्बासी इस्लामाबाद से, वो बता रही थी कि क्या कुछ हुआ आज पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन में। हमारे साथ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कि सलमान रावी हैं जिन्होंने इस दौरे पर नज़र बना रखी है। सलमान साहब, ये जो खबरें आ रही हैं इस तरह की कि वो बीच में आ गए वापस, और ये भी कि उनका जो भाषण था उसे ब्लैकआउट कर दिया गया था, मीडिया में इस तरह की कुछ खबरें चल रही थी, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, जहाँ तक ब्लैकआउट करने का सवाल है तो उस पर विदेश मंत्रालय के सचिव विकास स्वरूप का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक स्टैंडिंग प्रोसीजर है, ये एक रस्म है जो सार्क के इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं उनमें होता है कि जो मेज़बान देश होता है उसके लोग बोलते हैं और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इन कैमरा, यानी कि वो फिर मीडिया को उससे दूर रखा जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की भी, जैसा भी इरम अब्बासी ने कहा कि उन्हें भी वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे आपको और बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे मामले पर गृह सचिव राजेश महर्षि ने क्या कहा, वो थोड़ा सा श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ।
जी जरूर।
इसमें आम सहमति से कई विषयों पर चर्चा हुई, विशेषकर टेररिज्म के ऊपर, और टेररिज्म के अंदर भी विशेषकर सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क और सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क को शीघ्र से शीघ्र स्थापित करने में सभी देशों से निवेदन किया गया कि जिन देशों ने अभी तक इसके लिए सहमति नहीं दी है वे इसके लिए शीघ्र सहमति दें। सार्क एंटी टेररिज्म,
तो ये गृह सचिव को आपने सुना कि वो कह रहे थे क्या कुछ हुआ?
ये राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है जिसके ब्लैकआउट करने की बात कही जा रही है, उसकी स्पीच मैंने सुना कि शायद आपके पास आ चुकी है।
जी जी, और ये है कि उन्होंने इस, हालांकि बहुत कड़ा टोन था, ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये बिल्कुल पहले से ही तय था कि सार्क सम्मेलन के साइड लाइन्स पे ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री, गृह मंत्री मिलेंगे, इंटीरियर मिनिस्टर, और ना ही राजनाथ सिंह की मुलाकात होगी। तो ये पहले से एजेंडा तय था और इसी पर राजनाथ गए थे ब्रीफ को लेकर। लेकिन उन्होंने जब अपनी स्पीच आई उसमें कुछ कड़े स्टांस का जो है वहाँ पे मुजाहरा किया। खास तौर पर उन्होंने कहा कि, और सिर्फ भारत का ही नहीं, राजनाथ सिंह ने पठानकोट में हुए हमले, ढाका, काबुल में हुए हमलों का रेफरेंस दिया, और ये भी कहा कि एक देश का जो चरमपंथी है वो दूसरे के लिए वो शहीद या फ्रीडम फाइटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो उसको महिमा मंडन जिसको कहते हैं कि चरमपंथियों का किया जाना, वो भी गलत है। लेकिन उसके साथ साथ गृह मंत्री ने ये भी संकेत दिए कि जो अगली बैठक होने वाली है सार्क देशों का, 19वां जो सम्मेलन होने वाला है वो इस्लामाबाद में ही होने वाला है, और उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत उसमें हिस्सा लेगा। और जैसा कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने की बात कही जा रही है कि वो उसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्रियों की और राष्ट्राध्यक्षों की जो है बैठक होगी। और लेकिन साथ साथ ये भी है, उसमें ये संकेत उन्होंने दिए अपने भाषण में कि सितंबर माह में आने वाले 22 और 23 तारीख को दिल्ली में बैठक होने वाली है, हाई लेवल ग्रुप है एमिनेंट एक्सपर्ट्स का, जो सार्क एंटी टेररिज्म के मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए जो बैठेंगे, और उसके लिए उन्होंने तारीफ भी की सार्क मेंबर्स की और कहा कि ये जो प्रपोजल था ये बेसिकली ये भारत का प्रपोजल प्रपोजल था कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए और ये था, लेकिन कुछ कड़े शब्दों का जो इस्तेमाल किया उन्होंने, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे और जिस तरह का माहौल बना था, ख़ासतौर से कश्मीर में जो कुछ हुआ और उसके बाद राजनाथ सिंह के इस्लामाबाद जाने से पहले जो वहाँ प्रदर्शन हुए उसको लेकर एक कड़े रुख का जो है उन्होंने,
भारत में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी तक नहीं की,
नहीं उतरते ही वो आते ही सीधे प्रधानमंत्री के पास गए और उन्हें ब्रीफ करने के लिए गए, उसके बाद से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
बहुत शुक्रिया सलमान रवि इस पूरी जानकारी के लिए, हम अपने अगले कार्यक्रम में भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। और आपको बता दें कि गृहमंत्री के पाकिस्तान दौरे पर भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के लोगों की भी नज़रें टिकी थी और कहीं कहीं ये उम्मीद भी थी कि कश्मीर में जो अशांति फिलहाल चल रही है कहीं उसमें कमी आए, लेकिन इस बीच राज्य में दो और लोगों की मौत हो गई है। सुनिए कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, रिपोर्ट रियाज मसरूर ने भेजी है।
दक्षिणी कश्मीर और श्रीनगर में फोर्सेज की फायरिंग से और दो लोगों की मृत्यु से स्थिति और भी तनावग्रस्त हो गई है। प्रशासन ने पूरे कश्मीर में कर्फ्यू को सख्त कर दिया है और इंटरनेट पर प्रतिबंध भी जारी है। कर्फ्यू के दौरान दक्षिणी कश्मीर में लोगों की बड़ी संख्या रोज विरोध मार्चों में शामिल होती है। दक्षिणी कश्मीर के लोगों ने बताया कि कल एक बाइक रैली के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 40 बाइकर्स पर टियर गैस फेंके और बाइक्स की तोड़फोड़ की। इस बीच भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच रिश्तों की बर्फ पिघलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस दौरे के बाद लोग काफी निराश लगते हैं।
ये लोगों का मसला है, 1,30,00,000 आबादी, जब तक ना लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं, तब तक अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही बिस्तर में सो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
जब तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर जो प्रिंसिपल पार्टी हैं उनसे बात नहीं होगी, तब तक किसी भी उम्मीद हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से रखना फिजूल है। कश्मीरियों की जो उम्मीद है वो बैन अवी इदारे यूनाइटेड नेशन से है, उनके रेजोल्यूशन पास हैं, तो कश्मीर उनसे चाहे क्या ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनको इस वक्त जो है अपने रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।
राजनाथ सिंह जहाँ पे ये विद इन द सिस्टम की अगर हम बात करें तो कश्मीरी उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी इंडिया की पॉलिसी रही वो हमेशा डोंग झूठ और गलत बयानी पे मबनी रही है आज तक।
गौरतलब है कि राजनाथ सिंह सार्क देशों के गृह मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस के लिए कल इस्लामाबाद गए थे। वहां उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ से बुरहान वानी को शहीद कहने को गलत बताया और कहा कि आतंकवादी अच्छे या बुरे नहीं होते, परंतु इनका यह बयान सेंसर किया गया, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार अली की तरफ से दोपहर के भोजन का निमंत्रण रद्द कर दिया। कई विश्लेषकों को इस दौरे के दौरान बैक चैनल्स पर पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर के बारे में किसी बातचीत की उम्मीद थी। पत्रकार और विश्लेषक शेख कयूम कहते हैं कि ये उम्मीद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हार्ड लाइन से खत्म हो गई।
मगर जो नवाज शरीफ साहब ने राजनाथ सिंह के वहां आने से आते ही एक बयान दिया कि कश्मीर की यहाँ की मौजूदा हालात पे और कहा कि ये कश्मीर की जदोजहद की एक नई लहर है, तो उसे मुझे लगता है जो भी भारत और पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए कोई छोटी सी खिड़की कहीं खुली होती वो भी बंद हो।
इस बीच अलगाववादी नेता सईद अली गिलानी ने सार्क देशों के संगठन को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को विवादित जतलाने और यहाँ के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की मांग की थी। उन्होंने सैन्य कानून को हटाने, कैदियों को छोड़ने, हुर्रियत नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कश्मीर आने की अनुमति की भी मांग दोहराई है। गौरतलब है कि घाटी में 27 दिन से जारी आंदोलन, बंद, कर्फ्यू और प्रतिबंधों के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए 500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे 8 जुलाई को चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की पुलिस ऑपरेशन में मृत्यु से घाटी में प्रदर्शनों की लहर फैली थी, जिसे दबाने की कार्रवाई में अब तक 50 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
ये BBC रेडियो है और आप तीसरी सभा सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ दिनभर। और आइए अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। फैसले लेने के अधिकारों और प्रशासनिक ताकतों का स्पष्टीकरण करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जांच समिति का गठन करने से पहले दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से अनुमति लेनी जरूरी है। आम आदमी सरकार ने इस फैसले के बाद पूछा है कि अगर दिल्ली राज्यपाल से ही प्रशासित करनी थी तो दिल्ली में चुनाव क्यों करवाए, आखिर क्यों संविधान में दिल्ली को खास दर्जा दिया गया। एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली से वैभव श्रीवास्तव।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि LG ही दिल्ली के प्रशासनिक अध्यक्ष हैं और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को उनके फैसलों को मानना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि नीतिगत फैसले LG को जानकारी दिए बिना जारी नहीं किए जा सकते। मीडिया से बात करते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि ये फैसला किसी की निजी जीत नहीं है, बल्कि कुछ मामलों पर कोर्ट की तरफ से आया एक स्पष्टीकरण है।
अगर कोई प्रपोजल हमारे पास आए जिसमें हम समझते हैं कि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं पता, तो उस चीज को हम वापस कर देते हैं एडवाइस के साथ कि मेहरबानी से इसको दुरुस्त कर दिया जाए। और इस चीज को, आज के ऑर्डर को, आपको इसी परिपेक्ष में देखना चाहिए कि ये किसी की जीत नहीं है। नजीब जंग केजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं है, ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी की बात है।
कोर्ट के आए फैसले में आप सरकार से कहा गया है कि बसों के लिए सीएनजी फिटनेस घोटाले में और दिल्ली की क्रिकेट बॉडी यानी डीडीसीए में कथित घोटाला मामले में एलजी से सहमति लिए बिना जांच समिति गठित करना गलत है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल सीएनजी फिटनेस घोटाले में जांच की घोषणा की थी और कहा था कि एलजी नजीब जंग सहित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भी इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता अपनी परेशानियों के समाधान के लिए चुनाव जीत कर आए लोगों से अपेक्षा रखते हैं, पर उन्हें अपना काम करने से रोका जा रहा है।
कांग्रेस भी और बीजेपी भी जो बात बात में कहती है पूर्ण राज्य होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी चाहिए अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग भी ना कर सके। मेरा ये है कि इसमें सिर्फ यूटी नहीं है, यूटी लेजिस्लेचर है, यहाँ लेजिस्लेचर को एक व्यवस्था दी गई है, संविधान में व्यवस्था है, उस लेजिस्लेचर दरकिनार नहीं किया जा सकता। दिल्ली को सिर्फ एलजी साहब से ही चलवाना होता तो संविधान यूटी विद लेजिस्लेचर लेके 16th अमेंडमेंट के साथ क्यों आता? फिर संविधान में अमेंडमेंट क्यों हुआ? क्यों इतना पैसा खर्च करके दिल्ली में विधायक चुने जाते हैं? आज दिल्ली के लोग कहां जाएं? दिल्ली के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दिल्ली के लोग एलजी साहब के पास जाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने विधायक और विधानसभा चुन रखे।
वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उनके प्रमुख अरविंद केजरीवाल गलत भाषा का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने संविधान का उल्लंघन भी किया है।
और ये आम आदमी पार्टी संविधान के साथ, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। मैं ललकार के यहां से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी गाली देने में, खराब शब्दों का प्रयोग करने में, अनपार्लियामेंट्री वे में संबोधना करने में आप एक्सपर्ट हैं। आज जब आपको तमाचा लगे हैं तो कहां छुप के बैठे हुए, सामने आइए। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने इल्लीगल निर्णय लिए हैं, ये छोटी बात नहीं है बंधुओं, इल्लीगल निर्णय, गैर कानूनी निर्णय।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि एलजी के लिए दिल्ली के मंत्रिमंडल की हर सलाह मानना अनिवार्य नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार का मई 2015 का नोटिफिकेशन, जिसके तहत एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका गया था, वो भी कानूनी तौर पर वैध नहीं है। लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच कई मुद्दों पर खींचातानी चलती रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव। इधर गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जो 10% का आरक्षण दिया गया था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बीते महीनों में प्रदेश आरक्षण के नाम पर बड़े आंदोलन देख चुका है। आपको याद होगा कि पटेल समुदाय के लोगों ने काफी हंगामा खड़ा किया था। गुजरात में फिलहाल सरकार के मुखिया को बदला जाना है और इस बीच ये मुद्दा भी आ गया। स्थानीय पत्रकार प्रशांत दयाल से मैंने पूछा कि कोर्ट ने इस मामले में कहा क्या।
हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो आर्थिक आरक्षण है, ऐसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधानी नहीं है। जो आरक्षण है वो जाति के आधारित है, आर्थिक नियमों के अनुसार किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम ये गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करते हैं।
इस फैसले का क्या असर देखते हैं आप वहाँ?
इस फैसले का पॉलिटिकल असर काफी है, क्योंकि गुजरात में पिछले 1.5 साल में 2 बड़े आंदोलन हुए। पहले पटेल आरक्षण का आंदोलन हुआ और दलित आंदोलन हुआ, जिसके चलते मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। कल ही आनंदीबेन ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। नए मुख्यमंत्री आने तक वो अपना कार्यभार संभाल रही है, लेकिन नए आने वाले मुख्यमंत्री को ये गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से दोबारा वही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जो दिक्कतें आने जिले की। फिर से पटेल आरक्षण की मांग उठेगी, और पटेल आरक्षण की मांग करने वाले लोगों का पहले भी दावा यही था और मांग भी यही थी कि हमें ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए, नहीं कि आर्थिक आरक्षण दे। पटेल समुदाय भी ये जानता था कि आर्थिक आरक्षण का मामला जब भी कोर्ट में जाएगा तो उनको नुकसान होगा, तो ये फैसले आने के बाद तुरंत ही पटेल समुदाय ने फिर से ये मांग की है कि उन्हें आरक्षण तो चाहिए लेकिन ओबीसी कोटा में आरक्षण चाहिए, तो फिर से नए मुख्य आने वाले मुख्यमंत्री यही दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा।
ये थे प्रशांत दयाल जो बता रहे थे कि गुजरात सरकार, गुजरात में हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है आरक्षण को ख़त्म करने का, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को उसका क्या असर हो सकता है। और इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के महाड़ के पास मंगलवार रात हुए हादसे के शिकार लोगों के शव सावित्री नदी से बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों के शव बरामद किए गए हैं जिनमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस प्रशासन मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। हादसे में मरने वाले के परिजनों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट के साथ अश्विन नागौर।
मंगलवार रात हुए इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने तुरंत NDRF तटरक्षक दल तथा नौसेना की मदद से खोज और राहत कार्य शुरू कर दिया। बचाव कर्मियों का दल बुधवार दिन भर खोजबीन में जुटा रहा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मंगलवार रात की घटना के बाद जानकारी मिली कि राज्य परिवहन की 2 बसों समेत 12 से 15 छोटे वाहन पुल टूटने से नदी में बह गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परिस्थिति साफ होती गई। गुरुवार सुबह पहला शव महाड़ से करीब 150 किलोमीटर दूर अंजरले बीच पर मिला, जो राज्य परिवहन बस के चालक श्रीकांत कामले का था। पिछले 42 घंटों से चल रहे इस खोज तथा बचाव कार्य के बारे में रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रकाश मेहता ने कहा,
2 बस गई है ये तो पक्का हो गया, और 2 टोलेरा गई है वो पक्का हो गया, और कितनी गाड़ी गई है उसके बारे में अभी तक किसी की इंक्वायरी, किसी के घर के लोग पहुंचे नहीं। NDRF की टीम, नेवी की टीम, तुम्हारी आर्मी की टीम, रेस्क्यू स्पोर्ट्स की टीम, ऐसे 150 लोगों की केंद्र की टीम लगी हुई है। अभी तक 9 बॉडी मिली है, उसमें से 3-4 को 2 रिश्तेदार से वो लेकर गए हैं, बाकी की अभी मिलना शुरू हुआ है।
ये थे प्रकाश मेहता। इस पुल से बहे वाहन नदी में फंसे होने की आशंका को देखते हुए खोज कार्य में मदद के लिए 300 किलो का एक लोहे का चुंबक भी मौके पर लाया गया, जिसे नदी में छोड़कर डूबे हुए वाहन खोजने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानिक मछुआरे तथा अन्य लोग भी खोज कार्य में शामिल हो गए। इलाके के सभी गाँव से हर किसी ने जो बन पड़ा वह मदद करने के लिए आगे आया। महाड़ से करीब 100 किलोमीटर दूर हरिहरेश्वर के समुन्द्र किनारे गुरुवार सुबह एक महिला की लाश देखी गई जो इसी हादसे की शिकार थी। हरिहरेश्वर निवासी जितेश भोसले ने सुबह समुन्द्र किनारे टहलते वक्त यह लाश देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जितेश भोसले ने बताया,
घर बीच पे मैं मॉर्निंग वॉक को गया था, सुबह गया था तब मैं देखा वो शोर देखा तो मैं पूरा घबरा गया, वो कौन है। देखो बाद में लगा वो मार का उधर दुर्घटना घरी वही हो गए। फिर देखा मैं उधर जाके तो एक लेडीज उधर गिरी थी, पूरा बेकार खून निकल रहा था नाक से। तभी मैं पुलिस को इंसिडेंट किया और पुलिस पटेल हमारा बोला, पुलिस पटेल को फोन किया, मेरे आदमी लोग है इधर हरिहरेश्वर में, उनको बुलाया उधर में, तो बाद में पुलिस आए तो उनको लेके गए।
ये थे जितेश भोसले। इस खोज और बचाव कार्य में लगी NDRF के टीम की बोट पानी के तेज बहाव के चलते गुरुवार सुबह पलट गई, जिसमें एक जवान को गंभीर चोट आई। इन जवानों को नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से नदी से बचाया गया। गुरुवार का खोज कार्य शाम 6:30 के बाद रोक दिया गया, जो शुक्रवार को जारी रहेगा। राज्य परिवहन विभाग के जिन कर्मचारियों की इस हादसे में मौत हुई है उनके परिवार के एक सदस्य को विभाग में नौकरी दी जाएगी। बहरहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सभी पुराने पुलों की जाँच के लिए IIT बॉम्बे के 3 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई है जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। अश्विन अघोर, मुंबई, BBC हिंदी के लिए।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, लेकर आए हैं राजेश प्रियदर्शी और स्वाति बख्शी।
आपकी राय श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूँ स्वाति बख्शी और आज मेरे साथ हैं राजेश प्रियदर्शी।
नमस्कार।
पोस्टकार्ड उठाऊंगी सबसे पहले मैं राजेश जी। एक चिट्ठी अशोक सिंह कुशवाहा की आई है और इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है कि कहां से इन्होंने चिट्ठी भेजी है। उत्तर प्रदेश में किसी जगह से चिट्ठी आई है, चुनार उत्तर प्रदेश, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। कहते हैं कि इंडिया बोल का जो मुद्दा था, हिंदुत्व में दलित की स्थिति, उस पर विचार प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया बोल कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए थे। कहना इनका यह है कि हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म से है और जो चालाक लोग हैं वो हिंदुत्व को राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं, जबकि हिंदुत्व कभी राष्ट्रवाद से नहीं जुड़ सकता क्योंकि हिंदू धर्म का आधार वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति है।
जी, आपको विचार प्रकट करने का मौका नहीं मिला इंडिया बोल में, आपके विचार स्वाति ने अभी पढ़े और हमको बताए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमें पत्र लिखते रहेंगे और अपने विचारों से अवगत कराते रहेंगे।
दो और पोस्ट कार्ड हैं, एक तो चिट्ठी है विनोद कुमार शुक्ल की है, इन्होंने भी उत्तर प्रदेश से ही चिट्ठी लिखी है। पिपटा बाजार मुआफी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, गोंडा उत्तर प्रदेश से
जी।
कह रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मधुकर उपाध्याय जी ने जो भारतनामा प्रस्तुत किया था उसको उसी क्रम में भारतनामा द्वितीय के नाम से उसको पेश किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो तमाम कारणों से प्रभावित चल रही है।
बहुत शुक्रिया आपका, ये कार्यक्रम आपको और बहुत सारे दूसरे लोगों को पसंद आया। भारतनामा हम प्रसारित कर चुके हैं और लोगों की मांग पर उसको पुनर्प्रसारित कर चुके हैं, दोबारा भी सुनवा चुके हैं, और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो हमने आप जैसे श्रोताओं की ही जो फरमाइश थी उस पर मधुकर उपाध्याय को दोबारा बुलाया और उनको सागरनामा नाम का एक कार्यक्रम करने को कहा, जिसमें उन्होंने जो तटवर्ती भारत है, जो कोस्टल इंडिया है, उसका चुनाव से पहले दौरा किया और वहाँ की रिपोर्टें भेजी। और भारतनामा एक लोकप्रिय और ऐसा कार्यक्रम है जो लोगों को पसंद आया, और ट्रैवलॉग के बारे में बदले हुए भारत में नए सिरे से नए तरीके से कुछ करने के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं आने वाले दिनों में।
बिट्टू लोधी की चिट्ठी है और इन्होंने बस शिकायत भेजी है, ये सक्रिय श्रोता हैं और हम कभी इनके पत्रों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है।
ये देखिए, ये चिट्ठी है मेरे पास बिट्टू जी की, सागर मध्य प्रदेश से। पीछे जिनके पास जितनी जगह थी उसमें इन्होंने पूरा बड़े बड़े अक्षरों में अपना पता लिखा
लिख दिया
और इस तरफ शिकायत की कि हम जवाब नहीं देते। बिट्टू जी, सवाल भी तो बताइए, लेकिन आपके इस पत्र के लिए शुक्रिया, और अगर आप हमसे सवाल करेंगे या अगर आप अपनी राय प्रकट करेंगे या आप हमसे कुछ जानना चाहेंगे तो हम ज़रूर जवाब देंगे।
आलोक रंजन की चिट्ठी है सहरसा से और कह ये रहे हैं कि प्रतिदिन कार्यक्रम सुनते हैं लेकिन कुछ महीनों से इनको ऐसा लगता है कि बिहार राज्य से जुड़ी हुई खबरें जो हैं वो कम सुनने को मिल रही हैं। कह रहे हैं कि कहीं इसका कारण बिहार के पूर्व संवाददाता मणिकांत ठाकुर के हट जाने की वजह से तो नहीं है।
देखिए, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको इन दिनों गुजरात ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, कश्मीर ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि वहां से ज्यादा खबरें आ रही हैं, वहां पे हलचल ज्यादा है, गतिविधियां ज्यादा हैं। लेकिन बिहार में जब भी कोई बड़ी बात होती है, जब भी कोई रिपोर्ट करने लायक खबर होती है, ऐसी खबर जिसको पूरे देश के लोग सुनना चाहते हों, तो हम उसको जरूर प्रसारित करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।
अब मैं ईमेल्स उठाऊंगी। कृष्ण कुमार का मधुबनी बिहार से ईमेल है और इनका कहना है कि बीबीसी हिंदी सेवा पक्षपाती है। बीबीसी के अनुसार आतंकवाद है ही नहीं, क्योंकि आज तक आतंकवाद को आप आतंकवाद नहीं कहते, उसको चरमपंथी या बंदूकधारी या हमलावर कहते हैं। और बीजेपी शासित राज्यों में अगर दलित या अल्पसंख्यक पर खरोंच भी आती है तो उस पर हर रोज 10 मिनट कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन गैर बीजेपी राज्यों में दलितों की हत्या पर या तो आप चुप्पी साध लेते हैं या फिर एक वाक्य में सिर्फ खबर प्रसारित करते हैं।
दो सवाल हैं इसमें, पहला सवाल है, दूसरा आरोप है। पहले तो ये कि हम किसी को आतंकवादी नहीं कहते, ये हमारी संपादकीय नीति है और उसकी बहुत ठोस वजहें हैं कि आतंकवादी का बिल्ला हम किसी पर नहीं चिपकाना चाहते, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से और लोगों के हिसाब से आतंकवादी की परिभाषा बार बार बदलती रहती है। सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि नेपाल में दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड, जिनको नेपाल की सरकार, दुनिया भर के बहुत सारे लोग आतंकवादी कहते थे, हम नहीं कहते थे। वो नेपाल की जनता ने चुना है और तय किया कि अब वो दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो हम कब कब प्रधानमंत्री आतंकवादी और शहीद और बड़े नेता, इनके बीच में विशेषण बदलते रहेंगे। तो न तो हम किसी को आतंकवादी कहते हैं, न हम किसी को शहीद कहते हैं, क्योंकि हम किसी देश की जो राजनीतिक व्याख्या है या परिभाषा है उससे बंधने के बदले आपको जो तथ्य है और जो समाचार है वो देने की कोशिश करते हैं।
तो और चिट्ठियां लेने का मेरे पास वक्त नहीं है राजेश जी, यहीं पर मैं पता बताना चाहूंगी, अगर आप ईमेल करना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk, और अगर आप पत्र लिखना चाहते हैं तो बीबीसी हिंदी पोस्ट बॉक्स सेवा 3035 नई दिल्ली 110003। नमस्कार।
आपकी चिट्ठियों के साथ ही समय है आपसे विदा लेने का, तो आइए सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान में हो रही सार्क गृह मंत्रियों की बैठक से दिल्ली लौट आए हैं। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गए भारतीय गृह मंत्री ने चरमपंथ पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा है कि आतंकवादी को किसी भी हालत में शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सऊदी अरब के शाह सलमान ने अपने अधिकारियों से सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को वापस भेजने का इंतजाम करने को कहा है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया हरता कांडपाल ने और आज स्टूडियो संभाला है राजेश चौहान ने। आपसे डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में दोबारा मुलाकात होगी। निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।